आशाओं के दीप जला।
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
गीतों का विषय तुम मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तुम मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुम मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश नवाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश नवाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना। जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन को थामे रहूं, ओ मेरी वो साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार। देखो शायद कल ना आए ना करना इनकार। एक दिन तो करना ही होगा सबको उसका सामना। एक दिन तो करना ही होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय
प्रिय श्रोता, आज के परिचर्चा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सुनते समय आपने एक खास शब्द को कई बार सुना होगा, जिसे हम कई बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। मैं आशा करती हूँ कि इस शब्द का मतलब भी आप अच्छी तरह से समझते होंगे। जी हाँ, ये शब्द है विश्वास। पर क्या आपने इसके बारे में गहराई से कभी चिंतन किया है? आज हम इसी विषय पर आपके लिए चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रेवरेंड डॉक्टर सरकार उपस्थित हैं। तो आइए हम इस परिचर्चा को प्रारंभ करें। क्या आप हमारे श्रोताओं को बतला सकते हैं कि विश्वास का मतलब क्या है?
जी हाँ, संसार का हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करता ही है। पर विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का सार है, जो हमारे अंदर निश्चयता प्रदान करता है।
क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में कुछ लिखा है? और यदि लिखा है तो वो क्या लिखा है?
इसके बारे में इब्रानियों 11 अध्याय प्रथम पद में कुछ ऐसा लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी विश्वास के द्वारा हम आशा की हुई वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं।
तो क्या ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए हम विश्वास कर रहे हैं वह कोई दिखलाई देने वाली वस्तु हो?
दिखाई पड़ने वाली वस्तु का मतलब कोई फल, परिणाम, कार्य और प्रार्थना के असर से है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका असर या परिणाम के रूप में कुछ न कुछ अवश्य ही दिखाई देगा। हो सकता है कि कभी कभी यह दिखाई पड़ने वाली वस्तु हो या कभी कभी यह अदृश्य वस्तु भी हो सकती है।
अब मैं समझ गई। और तभी तो हमें इसका मतलब इस बात का निश्चय हो पाएगा कि हमारे द्वारा मांगी गई वस्तु हमें मिल गई है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह एक प्रमाण भी होता है?
क्योंकि इब्रानियों के इसी पद में ये भी लिखा है कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। किसी प्रमाण के द्वारा ही हमारे विश्वास को बल मिलता है और हम उस प्रमाण को दावे के रूप में दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं।
अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि विश्वास हमें किन पर करना चाहिए?
आपका ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मरकुस के सुसमाचार में इसके बारे में लिखा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, उन्हें छोड़ हम किसी दूसरे पर विश्वास न करें, अन्यथा हमें धोखा मिल सकता है। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
जी हाँ, ये बात तो सच है, क्योंकि आज बहुत से लोग अपने आप को परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर अंत में पता चलता है कि वे घोर अन्यायी और पापी हैं। इस बात की चेतावनी हमें पहले ही से पवित्र शास्त्र में दे दी गई है।
फिर इसके आगे यूहन्ना अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है, और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। अतः मरकुस और पहला यूहन्ना के इन दोनों पदों को मिलाते हुए बस यही कहा जा सकता है कि हमें परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और तभी हमारा विश्वास करना सार्थक हो पाएगा।
ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाई है। शायद ये सच्चाई बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और इसी कारण वे गुमराह हो जाते हैं। उनका विश्वास अंधविश्वास बन जाता है और वे मार्ग से भटक जाते हैं। क्या आप अंधविश्वास के बारे में कुछ विशेष बातें बतलाएंगे?
जी हाँ, क्यों नहीं। अंधविश्वास का कोई ठोस आधार नहीं होता। ये कथा कहानियों पर आधारित रहते हैं जिनमें कोई असलियत नहीं होती, पर मनुष्यों द्वारा रची रचाई बातें पाई जाती हैं। ऐसी बातों पर विश्वास करने से लोग गलत दिशा की ओर चले जाते हैं।
फिर तो हमें इनसे बचना चाहिए। लेकिन क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि विश्वास का मुख्य लक्ष्य कौन है और हमें किस पर विश्वास करना चाहिए?
मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के पहले पद के आधार पर बतलाना चाहता हूँ, जैसा कि स्वयं प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ स्पष्ट तौर से कहा गया है कि हमें विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना चाहिए।
क्या इसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भी कुछ सलाह दिया है और उन्होंने क्या लिखा? क्या इसके बारे में हमें कुछ बताने का प्रयास करेंगे?
इसके बारे में कई स्थलों में लिखा है, जिनमें मूसा, पौलुस, सुसमाचार और बाइबल इतिहास इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी में एक ही निर्देश दिया गया है कि हमें यीशु मसीह पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग वही है।
आपने हमारे श्रोताओं को सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ आज के चर्चा का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09-835-983-759। पुनः एक बार 09-835-983-759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।